گان میں بے بردمان مہان دن بکھرے ہمارے. سمے سار پرماگم کی 137 سے 140ویں گاتھا تک کا ایک ٹیکا اور ٹیکا کے بعد میں جو مہتوپورن پرکرن ہے وہ چل رہا ہے. سنکھیپ میں 5 منٹ میں ہم اس وشے کو دہرائیں گے جس سے پرانے لوگوں کو بھی یاد آ جائے اور نئے لوگوں کو بھی معلوم پڑے کہ بات کہاں سے چل رہی ہے. گاتھاؤں میں کہا گیا ہے کہ اجیان کا ادے کیا ہے. ابھی اپن گاتھاؤں میں پڑھ رہے تھے, جن نے دھیان سے یدی ان گاتھاؤں کا پدانواد پڑھا ہوگا نا تو ان کو یہ بات خیال میں آئے گی کہ اس میں لکھا تھا کہ نج تتو کا اجیان ہی بس ادے ہے اجیان کا, اور نج تتو کا اشدھان ہی بس ادے ہے متھیاتو کا. اور ایسے 5 گنائے ان نے, 5 ادے. اسنجم کا ادے ہی ہے, ایسا ایسا گنائے نا, اسنجم کا ادے ہی اسم. اور ایک انت میں یہ پرشن کھڑا ہوا تھا کہ ایک جگہ اس سمے سار میں 4 گنائے اور دوسری جگہ 5 گنائے. 109ویں گاتھا میں بند کے کان 4 گنائے تھے اور ان گاتھاؤں میں 5 گنائے, اور مہاساس تتوا سوتر میں بھی 5 گنائے. لیکن جب ان کے اندر دیکھتے ہیں تو جو پرماد نام کا کارن بتایا ہے تتوا سوتر میں, وہ سمے سار میں بالکل غائب ہے. اور سمے سار میں جو یہاں 5 بتائے ہیں ان میں ایک اجیان کا ادے نیا کارن بتا دیا ہے. تو تتوا سوتر سے مدبھید کے بارے میں تو یہ اتر دیا گیا تھا کہ وہ کوئی فرق نہیں ہے, پرماد کو اورتی اور کسائے میں شامل کر لیا, کیونکہ پرماد اورتی روپ ہوتا ہے یا کسائے روپ ہوتا ہے. پرماد کے 15 بھید ہوتے ہیں نا, جس میں 4 کسائیں, 4 وکتائیں, 5 اندریوں کی آدھینتا اور ندرا اور سنیہ, یہ 15 بھید ہوتے ہیں. تو ان میں کسائے ہے تو کسائے کے میں آگ شامل ہو گئی, اور 5 اندریوں کی آدھینتا یہ اورتی ہے, تو یہ اورتی میں شامل ہوگی, بچا کیا؟ اس لیے انہوں نے الگ سے نہیں گنایا. پھر پرشن کھڑا ہوا کہ ان نے کیوں گنایا, کہ اس کا اور خلاصہ ہو جائے, اس لیے ان نے بھید کر کے بتا دیا. کون سی اس میں بڑی بات ہے؟ جیسے کہ سمے سار میں 9 تتو بتائے, تتوا سوتر میں 7 تتو بتائے. ایسا مانا جاتا ہے کہ دونوں ہی گرو چیلے تھے, کند کند گرو تھے, وہ ماں سوامی شیشیہ تھے ڈائریکٹ. اور پھر بھی یہ کیوں؟ تو وہاں کہا گیا نے پنیہ پاپ کو آسر بند میں شامل کر لیا, پھر ان نے الگ سے کیوں بنائے؟ پھر ہم آسر کو ہے بتاتے ہیں تو یہ پنیہ کو ہے سمجھتے ہی نہیں, جبکہ آسر تو دو ہی پرکار کے ہوتے ہیں. جب ہم بند کو ہے بتاتے ہیں تو یہ پنیہ کو ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم نے الگ سے پنیہ پاپ ادھیکار لکھ کر کے اور بات وشیش کھول دیا. ان نے نہیں کھولا تو ایسی وبھن اپیکچھائیں آگم میں ہوا کرتی ہیں. اب یہاں جو بات ہے کہ یہ تو دونوں سمے سار کی بات ہے, ایک جگہ 4 گنائے, میں چات حضرتی کسائے اور یوگ, اور یہاں بتائے 5. تو کہتے ہیں یہاں یہ اجیان کا ادے کیا آ گیا, نیا آ گیا. تو ٹیکا میں امرت چندر نے کہا کہ یہ ہیں تو یہاں 4 ہی, تو یہ 4 الگ الگ اور ایک چاروں کو ملا کر اس کا نام اجیان کا ادے ہے. ایک اجیان کا ادے مین ہے اور اس کے 4 بھید کر دیے, اس لیے وہ 4 ہی ہیں, یہ 5واں الگ نہیں ہے. اور ایسا تو اپنے بہت پرمپرائیں ہیں نا, سپت بھنگ میں بھی کرتے ہیں نا, ایک استھی ایک ناستی ہو, ایک استھی ناستی کو ملا دو تو تیسرا بھنگ بن جاتا ہے. کئی جگہ ہوتی ہے نا, अब हम रोजाना माताएं बहनें दालें बदल बदल के बनाती हैं ना, आज मूंग की, कल उड़द की, परसों अरहर की, और कौन होती है तुम जानो ज्यादा, और फिर एक दिन सबकी मिला के बना देते क्यों, तो वो भी बदलने की हो जाती है ना, मिक्सर मिला के बना देती कि नहीं, आता ही मैंने ऐसा किया, वे भी अपने रसोई बना रहे हैं। वो कहते हैं कि बंध का कारण तो अज्ञान का उदय है, और वो अज्ञान का उदय क्या है, आत्मा को नहीं जानना, आत्म तत्व को नहीं जानना, और जो आत्मा नहीं है ऐसे अतत्व उनको आत्मा जानना, इसका नाम है अज्ञान का उदय। और ये अज्ञान के उदय के चार भेद हैं, कौन कौन से, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो यहां ज्ञान है, मैं कल बता चुका हूं फिर भी आपको याद हो तो बढ़िया बात है, कि ये कौन से गुण की पर्याय है, ये अज्ञान जो है ये कौन से गुण की पर्याय है, कि इसमें क्या कहना, ये तो बहुत स्पष्ट साफ है, अज्ञान होगा तो ज्ञान ही गुण की पर्याय होगी, क्यों, क्लियर है, इसमें क्या सोचना। लेकिन जो इसके भेद गिनाए वे एक भी ज्ञान गुण की पर्याय नहीं, मिथ्यात्व ज्ञान गुण की पर्याय है, अवृत्ति ज्ञान गुण की पर्याय है, कषाय ज्ञान गुण की पर्याय है, और योग इतोरी के जब हो गया, ये अज्ञान के ये चार भेद गिनाए, समझे ना, तो ये इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है, ये अज्ञान, तो किस गुण की पर्याय है फिर, चार गुण की, हाँ घबराते क्यों हो, इनमें तीन चार गुण की पर्याय है, तो एक योग गुण की, योग अयोग है ना, चार बताए ना, योग का उदय, मन वचन काय की चेष्टा में आत्मा का जो उत्साह है उसका नाम योग है, ऐसे परिभाषा बताई थी, चित्त का उत्साह है। तो वो कह रहे हैं कि ये चार कोई भी अज्ञान कह रहे, तो मिथ्यात्व को भी अज्ञान कह रहे, अवृत्ति को भी अज्ञान कह रहे, इसका मतलब ज्ञानी के भी अज्ञान है, मिथ्यात्व चला गया और अवृत्ति न दृष्टि है, अब उसे अवृत्ति का उदय है ना, तो उसको भी यहां अज्ञान भाव कह रहे हैं। फिर कषाय कौन सी, अनंतानंदी तो गई, लेकिन अभी तीन कषाय का उदय तो है, तो उसको भी अज्ञान का उदय कह रहे हैं, तो ये चार त्रिमुखी की हो गई ना, अब चार त्रिमुखी पर्याय हो गई, अभी इसके बाद कहते कषाय की हो गई, अब योग देखो, अब ये तो केवल ज्ञानी हो गया भाई साहब, तेरहवें गुणस्थान का संयोग केवल ही है, और वहां भी अज्ञान का उदय विद्यमान है, मोटा नहीं सोचा कभी, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, इनको तो सुना चुका हूं सर, इसमें देखो पड़ोस में लिखा है कि ये अज्ञान के चार भेद हैं, और उसमें योग के उदय को भी लिया है, तो योग के फिर मनुष्य सहयोग केवली, अयोग केवली तो योग है ही नहीं हुआ चौदह में, तो यहां भी अज्ञान का उदय बता रहे, केवल ज्ञानी को भी अज्ञान का उदय, कि भैया तुमको वो बार बार जो अज्ञान आ रहा है ना, वो तुम्हारे दिमाग में ठुसा हुआ है, वो ज्ञान गुण की पर्याय मिथ्या ज्ञान रूप के, इसलिए तुमको अटपटा लग रहा है, लेकिन यहां तो जो बंद के कारण है उसको अज्ञान कहा जा रहा है, जबकि वहां बंद है तो उसका कारण भी अज्ञान से बंद होता है, ज्ञान से बंद नहीं होता है, वहां बंद नहीं होता तो हम नहीं कहते, कैसा वो बंद कहां होता है, वो तो अकेला आश्रय ही होता है, अकेला आश्रय ही होता है, पढ़ो गोमर सार में, कभी ईर्यापथ होता है, फलाना होता है, और उनमें स्थिति नहीं बढ़ती है, लेकिन वो एक समय रुकता है ना, तो एक समय का बंद हुआ ना, नहीं होता क्यों कहते हैं, तो और जगह कह भी दिया है कि नहीं होता है, तो नाणु जैसा है कि अणु के द्वितीय अधिक प्रदेश नहीं होते हैं, अर्थ तो ये है अणु के प्रदेश नहीं होते लिखे, ऐसा दिया, अणु प्रदेश ही थोड़ी है, है? ये इतनी बात चल चुकी है, समझ लेना, जो सहज भाव से ख्याल में नहीं होती है और जो जिन लोगों ने कल सुना था उन लोगों के लिए भी मतलब रिपीट हो गया तो अच्छा है, काल में रहेगी बात। अब देखिए, अपन ने कल बताया था कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ेंगे। बहुत लोगों को ये प्रश्न खड़ा होता है, खड़ा किया गया था कि जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थों की प्रशंसा गुरुदेव श्री बहुत करते थे, बोले नई टीका सामने आई तो बेगायब हो जाएंगे, ऐसा विकल्प था ना लोगों के चित्र में। क्यों भगवान जी, तुमने कहा नहीं आएगा ये, इसमें हमने सब लिए हैं, जहां विशिष्ट बात है अनुशीलन में लिए, अब टीका में तो कैसे लेते, तो जिसको जरा भी विकल्प आएगा तो अनुशीलन तो पहले छपे ना, अनुशीलन भी तो है ना, वहां मार्केट में समझ लीजिए, मार्केट की व्यापारियों की भाषा है, सबके सामने मौजूद है ना, और उसने ये सब चीजें ली हुई है ना, तो रह कैसे जाएगा, और वो उसको कौन हटा रहा है, वो भी तो है ना। चलो सुनो क्या पढ़ते हैं ना, पेज नंबर बताओ, बोलो बोलो पेज नंबर, ये हवा से उड़ जाते हैं ना, इसलिए जरा गर्म रहती है। यद्यपि ये नीचे का पैरा सबसे पेज नंबर 217 पर, 17 पर 15 का है, अच्छा अच्छा दूसरा है, ये भी है, ये भी जय है। अज्ञान के अज्ञान भाव के भेद रूप, देखो अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात्व जयचंद जी छाबड़ा के पकड़ में ये बात आई थी, तो हम सब महसूस करते हैं कि इतना गुरुदेव का पढ़ने सुनने के बाद और सब पढ़ने के बाद ये हमारी पकड़ में बात नहीं आई थी, इस अधिकांश मंजूर करते हैं ना, तो ये लिख देने के बाद भी 20-20 साल बाद हो गए इसे लिखे, पर अभी भी लोगों के ध्यान में ये बात नहीं है, पर जयचंद जी छाबड़ा को कोई नहीं था, छोटम जी ने तो टीका लिखी नहीं इसकी, लेकिन उनने समय सार पढ़कर वो ये बात उनके ख्याल में आई थी, इसके लिए भी ये भावार्थ मैंने निर्धारित किया है। बात तो अपन ने लिखा ही थी आगे पीछे, लेकिन उनके ध्यान में आई थी, और जयचंद जी छाबड़ा समझते हैं आप क्या, जो ये मानते थे कि टोडरमल जी जैसी प्रतिभा मुझमें नहीं है, एक महाकवि वृंदावन जी जिनकी बहुत पूजने और विधान है, बनारस में रहते थे, उनने जयचंद जी छाबड़ा को एक पत्र लिखा था उस जमाने में, वहां से कोई आदमी लेके पत्र आया था, ऐसे तो डाक दुहाग तो था ही नहीं, बनारस से जयपुर कोई साधारण दूरी तो है नहीं, उस पत्र में ये लिखा था, मैंने अपने पंडित टोडरमल वितरित करते तुम्हें छापा है उस पत्र को, कि मैं आपके पास न्याय व्याकरण आदि पढ़ने के लिए आना चाहता, क्योंकि वो ये महसूस करते थे कि मुझे न्याय व्याकरण नहीं आता, हिंदी का भी विद्वान थे, कवि थे तो कविताएं लिखते थे, बनारसीदास जी भी ऐसे ही थे, उन्हें भी संस्कृत ताकत नहीं आती थी, बेचारों ने कलश टीका का सहारा लिया था, वृंदावन जी भी ऐसे ही थे, तो मैं आपके पास आना चाहता हूं, एक तो बात इसलिए मुझे आप परमिशन दे तो मैं आऊं और कुछ दिन वहां रहूं आपकी पास है। दूसरा प्रश्न लिखा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अधूरा रह गया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे पूरा कर दीजिए। और तीसरा था कि हमारे यहां तो पूजन की पद्धति वो बीसपंथ की थी ना, वहां उनकी पूजन में सब बीसपंथ की गंध आती है, ये है, और आपके यहां कौन सी पद्धति है, ये भी उनने वहां जानना चाहिए थी। मेरा तो मतलब ये है कि उसका जो जवाब उन्हें दूसरे का दिया, उन्होंने कहा था जो दो के जवाब में बहुत मार्मिक बताता हूं, कि तुम्हें न्याय और व्याकरण पढ़ना है तो बनारस में ब्राह्मण विद्वान बहुत अच्छे हैं जो न्याय व्याकरण को बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, तो वहीं पढ़ लेना, इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है और मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं, फिर न्याय जाकर मैं समय खराब नहीं करूंगा तुम्हें पढ़ाने में, पढ़ा तो सकता हूं लेकिन मैं पढ़ाने का काम नहीं करूंगा ये, क्योंकि उसको पढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं और तुम्हारे यहां मिलते हैं ना, तुम हो वहां पर लोग क्या दिक्कत है। यदि तुम्हें अध्यात्म का कुछ समझना हो तो तुम जरूर आओ, मेरे से जो बनेगा मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत मार्मिक बात है, है? क्या जयपुर को जैनियों की काशी कहा जाता था उस समय। किसी को यदि जैन दर्शन का गहरा अध्ययन करना पड़ता था तो वो जयपुर आने की सोचता था, और 250 वर्ष बाद फिर भी यही वही के वही आ गया। दूसरा, अगर टोडर मल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा है तो तुम पूरा कर दो। तो उसका लिखा था, भैया टोडर मल जी जैसी प्रतिभा हमने नहीं है। एक होता है मौलिक ग्रंथ और एक होते हैं टीका ग्रंथ। हम तो शास्त्रों की टीका कर सकते हैं, मौलिक ग्रंथ नहीं लिख सकते। क्यों? अब मौलिक ग्रंथ में और टीका में क्या फर्क है? बोलो राके। टीका में हमको ये नहीं सोचना है कि आगे विषय क्या लिखे, जो आगे की गाथा आई उसका अर्थ बताया, अमरचंद ने लिखा, जिसने लिखा सब देख के आगे चले गए। विषय वस्तु के चुनाव की दिक्कत नहीं है, और उसमें पूरा विषय वस्तु का महल खुद खड़ा करना पड़ता है। बेल जो है वो दूसरे पेड़ पे चढ़कर आकाश में कितनी ही ऊंची पहुंच सकती है, अपने भरोसे नहीं पहुंच सकती, जमीन पे ही पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन पेड़ में वो ताकत है कि वो नीच जमीन में से उठकर वहां तक पहुंच सकता है। टोडर मल जी में ऐसी ताकत थी कि वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ को कहां कौन अध्याय में लेना, क्या क्या प्रज्ञान लेना, कैसे बनाना, किसके बाद क्या प्रज्ञान, सारा निर्णय कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक मौलिक प्रतिभा जिसे बोलते हैं कि नया ग्रंथ बनाना, तो उस ग्रंथ में कहां से हम क्या क्या विषय का चुनाव करें, कैसे चुनाव करें। मान लो हमें अनेकांत साधवाद पर भी लिखना है तो हम ये कहां लिखें, शुरू में ही लिख दें कि हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पहले वर्णन करेंगे, फिर सम्यक सम्य ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे, फिर सम्यक चारित्र में जब सम्यक ज्ञान का वर्णन आएगा तो उसमें हम प्रमाण और न्याय का वर्णन करेंगे, तो नए चक्र वहां आता टोडरमल जी का। ये सातवें अध्याय में तो नया भाषों की बात आई है, नयों के बारे में कैसी गलतियां कर दी थोड़ी थोड़ी वो बताई है। मैंने जो तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय पीठ किताब लिखी थी ना, तो मैंने उसके भी खड़ा करने में क्या किया, दो खंड रखे, एक सिद्धांत खंड और एक जीवन खंड। फिर जीवन खंड के तीन टुकड़े किए। कैसे किए, पढ़ाया क्या नहीं? पहले मैं भगवान महावीर से लेकर पहले क्या हुआ, आदिनाथ से लेकर महावीर तक क्या हुआ, पूर्व परंपरा, समझ गए ना। और दूसरे खंड में महावीर के पहले भवों में क्या हुआ, आप समझे ना। एक उनके पिताजी अपने दो हैं, एक ऐसा कि मेरे पिताजी उनके पिताजी हमारी एक देह की परंपरा है, और एक मैं पिछले भव में, उसका भव कहां से, उसका भव कहां से, एक भवों की परंपरा है। दो, समझ गया, हमारे पूर्व में दो पूर्व हैं, एक शरीर का एक आत्मा का। शरीर का पूर्व क्या, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, समझ गया ना। तो महावीर के भगवान के पूर्व माने आदिनाथ, उनके पहले 24 तीर्थंकरों के बारे में आदिनाथ का वर्णन किया, थोड़ा सा भरत बाहुबली का किया, पार्श्वनाथ का किया, नैमिनाथ का किया, आप समझिए ना, सब महावीर तक आए। और फिर एक उनके पूरा भव से लिया, जहां से उन्हें समझने की प्राप्ति हुई, मतलब शेर की प्रजा से पकड़ा, और फिर यहां तक लाए, और फिर तीसरे में वर्तमान भव। किताब बहुतों ने पढ़ी होगी, लेकिन इसमें ये ढांचा खड़ा करने के, क्या कैसे खड़ा करें, ये निर्णय करने के लिए वो कैसे निर्णय किया गया वो किसी को पता नहीं है। अब सिद्धांत खंड में क्या करें, तो हमने कहा दिया तीन हिस्से में बांटा, सम्मा दर्शन, सम्मा ज्ञान और सम्मा कारक। तो सम्मा दर्शन में क्या करें, तो चार चीजें लगाई, तत्वार्थ सिद्धांत सम्मा दर्शन, सत्य देव सासगुरु का वर्णन, तत्वार्थ सिद्धांत की चर्चा करी, देव सासगुरु की चर्चा करी और आत्मानुभूति की चर्चा करी, अब समझे ना। तो इस तरह से उसमें चार हिस्से बांटे, तत्व विचार और आत्मानुभूति ये सब दिए। फिर सम्यक ज्ञान खंड में प्रमाण और नए और अनेकांत और साधवाद, ये चार चीजें ली। फिर सम्यक चारित्र में पांच अणुवेद, पांच महावेद, वो सब जो आता है ना। अब अहिंसा महावेद गोवेद बहुत लंबी जगह वहां दे देते हैं, तो उतने ही सत्य को दो, अन्याय थोड़ी करोगे उतनी डिटेल में। तो वहां संक्षेप में निपटा दिया और परिशिष्ट में फिर अहिंसा पर एक चीज जोड़ी, जो हमें बहुत विस्तार से अहिंसा के बारे में कहना था, वहां क्यों नहीं डाली है? आप समझ गए, उसमें सब बात थिंकिंग है। एक इस तरह से वो उसमें सम्यक चारित्र का खंड पूरा किया, वो परिशिष्ट रखा। तो ऐसा एक ढांचा खड़ा करना पड़ता है। जयचंद जी ये महसूस करते थे कि मैं ढांचा खड़ा करने में समर्थ नहीं हूं, टूडा मिल जी में ये ताकत थी कि वे ढांचा खड़ा करते। अब उनके दिमाग में क्या था, अब आगे मैं क्या पूरा कर दूं, वे क्या लिखने वाले थे, मैं क्या पूरा कर दूं, वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता उसको, मेरे पे जो कुछ बनेगा मैं अपना ही लिखूंगा, मैं दूसरे का पूरा नहीं करूंगा। एक सिद्धांत और है आंटी जी, दूसरा का पूरा करने में क्या क्या है, हमेशा बकरी अपने जी से जाएगी और राजा जी को रोनी होने वाली है, समझ नहीं आया। हम तो उसमें पूरी मेहनत करेंगे और लोग कहेंगे वो बात तो नहीं है। एक तो बहुत महाभाग्यशाली कोई होगा कि ये कह लेगा कि नहीं साहब उससे भी बड़ी आए कि वैसा ही है, क्यों इसलिए वो काम नहीं। हम तो अभी हम जैसे हैं, हम वैसा हम में जो बुद्धि है हम वो करेंगे और उसके हमारा जो मूल्यांकन होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। हमें दूसरों के उस तुलना में खड़े, हमने उनकी तुलना में खड़े नहीं हो सकते, जयचंद साहब ने कहा। तो मैं ये दो जो अंतर होता है वो मैंने आपको बताया, ख्याल नहीं ना कि भाई दूसरे की पूरी करें हम तो वो उसी की तुलना में जाएगी, उस दृष्टि से देखेंगे ना। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक आध दफे मैंने बताई देवलाली में, अभी फिर दोहराना चाहता हूँ, इतिहास भी रह जाए इसके लिए भी, कि पन्ने टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व लिखने के तत्काल बाद मेरे दिमाग में यह था कि कांजी स्वामी पर ऐसा ही ग्रंथ लिखा जाए जैसा कि पन्ने टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व है ना, तो कांजी स्वामी व्यक्तित्व कर्तृत्व और जैसा कि टोडरमल जी का अध्यायों का वर्गीकरण है उसी तरीके से लिखा जाए, उसके दो खंड रखे जाएं, एक उनका जीवन खंड और दूसरा उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत खंड। सिद्धांत खंड में उनके द्वारा प्रतिपादित नयों का वर्णन, किंबद पर्याय का वर्णन, निमित्त उपादान का वर्णन, जो उनके उत्तरकाली ध्रुव का वर्णन, ये सारे सब्जेक्ट उसमें लिए जाएं सेकंड खंड में, और फर्स्ट खंड में उसमें जीवन लिया जाए। ये दिमाग में मेरा प्लानिंग था और 400 पेज मेरे दिमाग में थे उस वक्त। मैंने पाटनी जी को कहा, बाबू भाई को कहा, हेमचंद भाई को कहा, लेकिन सबसे पहली दिक्कत ये खड़ी हो गई कि आप स्वामी जी के मामले में जो उनका जीवन चरित्र लिखेंगे, बहुत लोग कहते हैं लिखो, तो उसमें ये जो चलता है ये लिखेंगे कि नहीं, क्या विपुल कभी नहीं, तीन लोगों तीन काल में कभी नहीं, क्यों क्यों कि महावीर का तो लिखा है, कि महावीर का तो शास्त्रों में उपलब्ध है ना, क्या किसी कीमत पर नहीं। तो कहा इसमें तुम हाथ मत डालो, और इसलिए फिर वो सब विचार अलग हो गया, अब क्रमबद्ध पर्याय की किताब आ गई, फिर नए चक्र की किताब आ गई, फिर निमित्त उपादान की किताब आ गई। अन्यथा ये सब कांजी स्वामी के विषयों के प्रतिपादन के रूप में उसके उस खंड में सब होता है। क्या समझे ना आप? अरे एक और गुप्त बात है, अभय जी कहें तो बता दूं। इतिहास की सुरक्षा के लिए बोलता हूं कि जब मैंने ये समय सार अनुशीलन लिखना शुरू किया तब एक प्रश्न आया कि भाई इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के का जीवन चरित्र इसमें दिया जाए, और प्रकाश जी में माधवी जी ने कहा मैं तो जानते मेरा तो वो जानते थे ये तो नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने वो अपना तैयार किया, अभय जी से पूरा तैयार करवाया और 10-20 पेज 50 के पेज जितने कितने पेज थे बिल्कुल फाइनल हो गया, जितने भी पेजों में लिखा हुआ था और उसमें वो सब था जो मुझे इष्ट नहीं था। मैंने कहा उनसे कि ये मेरी इस किताब के प्रकाश की में नहीं छपेगा, आपका ये प्रकाश की, आपको अलग किताब छापना है छापो बांटो जो भी करना हो करो, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा इसमें नाम है, मेरे नाम के साथ ये किसी कीमत पे नहीं जा सकता। और उसकी वजह से कम 6 महीना साल भर तक वो मामला पड़ा रहा। क्या? और ये समय सार अनुशीलन में इसकी जरूरत क्या है? मैंने कहा तो आपको बता रहे हैं, तो आप लोग कहते कि आप नहीं बताते, नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? ये मैं अनुशीलन लिख रहा हूं, जहां गुरुदेव को कोटन करना है, तो इसमें कहां आता है कि मैं टोटमल जी का डालू कि किसी का डालू? इसमें कोटेशन तो मैं सबका दे रहा हूं, अम्बचंद का जीवन भी डालू, फिर जयसन का जीवन भी डालू, फिर पांडे राजमल जी का जीवन डालू, उद्यान तो मैं सबके दे रहा हूं ना। ये समय सार अनुशीलन है, तो इसमें कुंद कुंद का परिचय होगा कि समय सार का परिचय होगा और किसी का नहीं। आखिर वो पढ़ ही रहा, अब अभय जी के पास होगा सुरक्षित तो होगा, और मुझे मेरे पास तो है नहीं, फिर वो नहीं छपा, तब ये समय सार अनुशीलन छपा। अब क्यों नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, अभी किससे कहे ये कहानी है? किसके आप सुनेंगे ना? नहीं तो मैंने बोला ना कि 72 में, सन 72 में ये मैंने डिसीजन लिया था कि वो लिखने का, और ये 91 में जब समय सार अनुशीलन लिखा गया तब ये चक्कर आया। मैं अपने नाम को उन बातों से किसी कीमत पर जुड़ने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आगम से बंधा हूं, और आगम में क्या प्रमाण मुझे लाके बताओ? क्यों? कि कुंद कुंद का तो लिखा है, कुंद कुंद का लिखा है कि उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है। क्या समझे? क्या लिखा? परमात्म समझे कि नहीं समझे? ये नहीं लिखा कि सर्वज भगवान ने कहा था, कि भगवान महावीर ने कहा था कि कुंद कुंद थे और ग्वाला थे, और ऐसे थे और वो हो गया था, फिर वो पेड़ खड़ा रह गया था और जल नहीं गया था, वो कहने किसने सुनाया? ये केवली तो उसके बाद हुए नहीं, कुंद कुंद के बाद कोई। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है, आप कहो तो ये लिख देता हूं मैं कि कांजी स्वामी के बारे में ऐसी किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, और जो कहो वो लिख दूंगा। क्या समझे ना? एक लाइन में वो सब बात क्लियर हो जाती है। तो जयचंद जी छाबड़ा कितने बुद्धिमान थे, कितनी महिमा मेरे चित्त में उनकी है, ये बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैंने उनके इस प्रकरण को यहां कोट किया। यही बात मैं अपनी तरफ से ही लिख सकता हूं, लिख भी दी, फिर भी उन्हें कोट करने की जरूरत, यदि मैं उनके नाम को उड़ाना चाहता तो मैं क्यों कोट करता? क्या जरूरत? वैसे कौन कहता है कि आप इनका कोट करो ही, मैं उसके लिए बाध्य तो नहीं हूं। तो अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात्व अवृत्ति कसाय और योग, देखो योग लिखा ना, योग के उदय उद्गल के परिणाम हैं, और उनका स्वाद अतत्व सिद्धानादिक रूप, मिथ्यात्व का अतत्व सिद्धांत, असंयम का अतारित्र रूप दशा, जैसे हरेक की पीछे कह रहा है ना, वो सब स्वाद ज्ञान में आता है, उसका स्वाद ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर कारमान बैगना रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव, जो मैंने पहले दिन कहा था कि क्या रहस्य निकलने वाला है इसमें, ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप प्रणमते हैं और जीव के साथ बंधते हैं, और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व सिद्धानादि रूप भाव रूप प्रणमता है, और इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावों का कारण स्वयं ही होता है। ये उन्होंने लिखा ना उसमें, योग का उदय अज्ञान में, अब आगे मिथ्यात्वादि का उदय होना और नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना तथा बंधना और जीव का अपने अतत्व सिद्धानादि भाव रूप परिणमना, यह तीनों ही एक समय में ही होते हैं, सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। ये बता रहे कि ये नहीं बन, कर्म के उदय से विकार नहीं हुआ और विकार के कारण कर्म नहीं बना, निमित्त निमित्त एक भाव है, एक कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं ये मैं पढ़ता हूं और फिर आप देखना इनमें से निकलते कि नहीं निकलते, जो पूरा अपन ने गाथाएं ली ना पांच, वहां से ये सब निकालना। गाथाओं में तो अज्ञान का उदय, मिथ्यात्व का उदय, असंयम का उदय, कषाय का उदय और योग का उदय, ये पांच प्रकार के उदय बताए हैं, परंतु आत्मख्याति टीका में अज्ञान के उदय को मुख्य रखकर शेष चार को अज्ञान के उदय के भेद रूप में विरूपित किया है। माने गाथा में ये बात नहीं है, वहां संकेत भी नहीं है और अमृतचंद ने ये किया, इस कारण वे चारों ही एक प्रकार से अज्ञान के ही उदय हैं। अब वो जो योग है वो भी अज्ञान का उदय, कषाय का उदय वो भी अज्ञान का उदय। अब आप कहते हो बंध का कारण तो अज्ञान है, कषाय तो है नहीं, अभी अंदर अंदर कषाय घुसी है ना उसमें, अज्ञान लिखा मिथ्या तो है नहीं। इस प्रकार अज्ञान के उदय में पांचों ही गर्भित हो गए, यही कारण है कि इन पांचों को एक अज्ञान भाव शब्द से ही अभिव्यक्त किया जाता है। अब जो जगह जगह अज्ञान भाव आए वो कौन सा अज्ञान भाव है ये आपको नक्की करना पड़ेगा, वो औदिक अज्ञान है, वो छह उषणों का अज्ञान है कि ये अज्ञान है कि जिसके ये चार भेद हैं। इन पांचों की परिभाषाएं टीका और भावार्थ में स्पष्ट हो ही चुकी हैं। भावार्थ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अज्ञान भाव के भेद रूप ये सभी उदय उद्गल के परिणाम हैं और इनका स्वाद अतत्व सिद्धानादि के रूप में ज्ञान में आता है, इसलिए वो अज्ञान का उदय नाम दे रहे, उनका स्वाद ज्ञान में आ रहा ना। मिथ्यात्वादि का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना और जीव का अतत्व सिद्धानादि रूप परिणमना, यद्यपि ये तीनों एक ही समय में होते हैं, सब स्वतंत्र रूप से अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता, तथापि इनमें निमित्त निमित्त भाव अवश्य है। स्पष्टीकरण हो गया। अब एक यहां महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है, ये है अनुशीलन। अनुशीलन इसका नाम है, अनुशीलन किसे कहते हैं, अनुशीलन किसे कहते हैं, डिक्शनरी में देख रहे हैं चल रहा है काम, कुछ विद्यार्थियों को सब्जेक्ट दे दिया इन लोगों ने और वो बोलने के लिए अनुशीलन, मेरे अनुशीलन किसे कहते हैं, अनुशीलन किसे कहते हैं, अब अनुशीलन इतने लिख दिए ना मैंने, जो लिखे उन्हें अनुशीलन कहते हैं। अनुशीलन क्या, क्या अनुशीलन क्या बताऊं, बोलो। अपन जाते थे ना यात्रा में अभी जी, तो कहते हमारा ज्ञान कैसा है कि एक गांव में, मैं बोलता था रोजाना के व्याख्यान में, हाँ धर्म चक्र की व्याख्या में ऐसा बोलता था कि एक गांव में ऊंट आया, उस गांव में पहले कभी कोई ऊंट नहीं आया था, तो किसी ने ऊंट नहीं देखा था, लेकिन बच्चे तो अपने माँ बाप को सर्वज्ञ समझते हैं, क्यों तो वो हर बात पूछते हैं, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा जवाब नहीं दें कैसे हो सकता है, तो उन्होंने पापा ये क्या है कि ये ऐसा ही होता है कि पापा इसके गले में क्या बनाए, ये घंटी बनी थी कि बेटा ऐसे के गले में ऐसा ही बना, इतने जानवाने। मैंने कहा धर्म चक्र चला था महावीर का तो किसने देखा था, उसका नक्शा कोई शास्त्र में बना है? ये झगड़ा क्यों खड़ा होता था? क्योंकि दिल्ली ने चार धर्म चक्र निकाले थे चार प्रांतों में, उत्तर पूर्व दक्षिण में, और एक हमने निकाला था गुजरात का अलग। तो उनने मुझे चार धर्म चक्र बनाए थे, उसमें वो धर्म चक्र ऐसा बनाया था, बिल्कुल लकड़ी का पट्टा करके ऐसे बना के जीप मीप में बनाया था, और हमने बनाया था कि वो अपनी बस थी यहीं जयपुर में ही, तो बनाया था पूरा हमने आकेदम। तो उसमें एक ऐसा लगाया था चक्र और वो घूमता था, जब बस चलती थी तो बहुत तेजी से घूमता था। तो लोग कहेंगे धर्म चक्र ऐसा था कि धर्म चक्र वैसा था। अब मुझे को एक व्याख्यान धर्म चक्र में करना पड़ता था रोजाना कि ये धर्म चक्र सही है कि वो धर्म चक्र सही है। तो मैं यही उदाहरण देता था कि भैया राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, तो सब जानते हैं। लेकिन अयोध्या तो सैकड़ों मील लंबी चौड़ी होती है, उसमें पर्टिकुलर पॉइंट जगह कौन सी थी ये तो कौशल्या के अलावा कौन बता सकता है? अब जिसने देखा वो धर्म चक्र वो बताए कैसा था वो। तो मैं ये कहता था चक्र माने होता है समुदाय, देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र आता ना, और धर्मेंद्र चक्र और सिद्ध चक्र। अब सिद्ध चक्र में सिद्धों के समूह को चक्र बोलते हैं। तो जो भगवान महावीर के समोसरण में जो धर्मात्माओं का समूह था वो वास्तव में वो धर्म चक्र था। अब समझ जाएगा आपके। अब उसका फोटो कैसे बना है? कहीं नहीं, उसमें लिखा है धर्म चक्र आगे चले भामंडल पिछवार। तो राजा साहब की सवारी चलती है तो कुछ आगे चलते हैं कुछ पीछे चलते हैं। तो धर्म के चक्र जरूर में कहते आगे ले लो महिलाओं को, सबसे पीछे रथ यात्रा और उसके पीछे चार चौकीदार, भामंडल पिछवार, धर्म चक्र आगे चले। धर्मोषण का बिहार होता था, लेकिन कोई प्रतीक तो हो झंडा मंडा, आया समझे ना। तो मैं उन्हें बताता था कि देखा तो किसी ने है नहीं, उनने देखा हो तो वे बताएं, शास्त्र लागे मुझे बताएं। अब उनकी वो धर्म चक्र बनाया है तो गाड़ी 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, क्योंकि वो ऐसा खुला खुला कर दिया है कि वो दौड़ नहीं सकती है। और हमें तो सारे हिंदुस्तान में 3 महीने में घुमाना है, तो हमारी गाड़ी को तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ना है। तो ऐसा धर्म चक्र बनाए ना कि जो उसके साथ में वो रह सके सुरक्षित ढंग से, और हमने बनाया ख्याल में आई ना। वो तो एक चिन्ह है, क्योंकि असली तो समुदाय वो है। तो इसकी व्याख्या में वो ऊंट का उदाहरण दिया करता था। तो अब अनुशीलन कैसे कहते हैं बोलो, डिक्शनरियां खोल खोल के दी, हम यही निकालेंगे बच्चे दोपहर में। अब देखिए क्या बात चल रही थी अपनी, कहाँ है एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है। देखो ये है, इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए लिखा है जो आपको कहीं नहीं मिलता। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ मिथ्या अवृत्ति प्रमाद कषाय और योग सभी को अज्ञान भाव बताया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, देखो, और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। ऐसी स्थिति में सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अविरति प्रमाद कषाय और योग नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये अज्ञान भाव है। पर सम्मनिष्ठी ज्ञानियों के भाव पाए जाते हैं, तथा यह भी स्पष्ट कर आए हैं कि ज्ञानी के विषय कषाय भी ज्ञान भाव में ही आते हैं, और अज्ञानी के वृत्त तपादि भी अज्ञान भाव में ही आते हैं। ये सब पीछे क्लियर हो गया। ये तो जिस दिन से मैं आया ना पर्यूषण के बाद में, दूसरे दिन ही शुरू कर दिया था, तब से लगातार चल रहा है। और यहाँ अगस्त का शिविर हुआ था, उसके बाद भी मैंने एक दिन बंद नहीं किया, वो सब चालू। तबीयत ठीक है तो क्यों बंद करना, चालू रखा है, समझे ना। तो उस सारे के संदर्भ में ये बात है। अब यह प्रश्न होता है कि अविरति आदि को ज्ञान भाव माने के अज्ञान भाव, यहां तो अविरति अज्ञान भाव कह रहे, और ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही हैं। तो अब इन्हें ज्ञानमय भाव माने ज्ञानी के कौन अविरति प्रमाद कषाय और योग जो ज्ञानी के हैं उनको क्या माने। सोचते हैं कभी अब इस तरीके से सोचना चाहिए और फिर अभी मौजूद है अब तो सोचना ही चाहिए ना। ये प्रश्न वास्तविक है क्या नहीं है क्या। तो जिनको ये प्रश्न के अनुशीलन किसे कहते हैं वो समझ लो अनुशीलन इसे कहते हैं। सुनो अरे भाई सीधी सरल बात है कि ज्ञानी के अवृत्ति आदि भाव अज्ञान भाव है क्योंकि वह उन्हें निज के मानता है निज रूप मानता है उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है जानता है। और ज्ञानी के जो भूमिकानुसार अविरति प्रमाद और कषाय आदि पाए जाते हैं वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं। आज मुझे पता नहीं है मैंने कितने बजे शुरू किया था कितने मिनट बाकी है बता सकता है कोई 54 मिनट में कितने मिनट बाकी है 54 मिनट का व्याख्यान करूंगा है खत्म करना है ठीक है। क्योंकि ज्ञानी का उनमें एकत्व ममत्व नहीं है वह उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता। यही अंतर तो है ज्ञानी और अज्ञानी में। यहां अज्ञानी के अविरति आदि भावों की चर्चा है इस कारण उन्हें अज्ञान भाव में शामिल किया जा रहा है। आत्मख्याति टीका और जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं। ज्ञान में क्या संकेत है सुनो ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय। वह अज्ञान भाव का भेद क्यों है असंयम का उदय और उसका ज्ञान का गेय बन रहा और अज्ञानी का कर्ता बन रहा है ना। और ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय और ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय। तो ज्ञान में जो स्वाद रूप होता हुआ वो है असली जड़। इत्यादि कथन से यह स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना मान रहा है अपना जान रहा है। ज्ञानी की पर्याय में भूमिकानुसार विद्यमान अविरति कषाय आदि के उदय ज्ञानी के मात्र गेय बनकर रह जाते हैं। सारी दुनिया गेय है सारी दुनिया जैसे उसकी नहीं हो जाती है तो ये भी उसके ज्ञान के गेय बने हैं बस खत्म। स्वाद रूप नहीं होते अब देखो क्या फर्क है। अब स्वाद रूप होना और ज्ञान के गेय बनने में क्या फर्क है देखो ये माताएं बहनें खाना बनाती हैं और बीच में माताओं बहनों के ऐतराज हो तो मैं कोई बात नहीं मैं रसोई का ध्यान ले लेता हूं कि एक कोई गड़बड़ नहीं हो जाए सब्जी में ज्यादा नमक ना पड़ जाए कम ना हो जाए ये सब उसको बीच में चख लेती है चख लेते ना वो और फिर वे जब भोजन करते हैं तब। अब इन दोनों में क्या फर्क है जब वो चखते हैं उस वक्त अकेला ज्ञान का गेय बनाना उद्देश्य है आनंद लेना उद्देश्य नहीं है। और जब भोजन करते हैं तो उसका मजा लेना उद्देश्य है। एक अकेले उस वक्त उसके अकेले ज्ञान के गेय बने और इस वक्त स्वाद रूप बने समझ गए ना। देखो एक लड़का यूनिवर्सिटी में टॉप हुआ तो उसका हमें ज्ञान हुआ यहां पुरस्कार दिया हमने धन्यवाद भी दिया प्रशंसा भी करी मालाएं भी पहना दी वो ज्ञान का गेय रूप बन होकर रह गया। और हमारा बेटा यूनिवर्सिटी में टॉप हुआ होता तो वो ज्ञान में स्वाद रूप हो जाता। समझ रहा है कि नहीं आया हम और बेटे साथ साथ धंधे में थे तो जो कमाई करते थे उसमें हमारा वो स्वाद रूप होती थी। अब अलग अलग हो गए न्यारा पूत पड़ोसी बराबर वो अपना धंधा करता है, अब उसका लाभ और हानि हमारा ज्ञान का गे बन के रह जाता है, स्वाद रूप नहीं होता। पहले भी कमाई वो ही करता था लेकिन उसको स्वाद रूप होता था। क्यों बोलो? बेटे का न्यारा होना अच्छा है कि बड़ा? बोलो दिलीप भाई, तो अच्छा है ना? क्योंकि जबरदस्ती हमें अपना मान रखा है, लेना नहीं देना नहीं है, और उसे स्वाद रूप होकर हम इतने दुखी हो सुखी होते हैं, कर्म बांधते हैं, और अब ज्ञान उभरे के रह जाता है, कर्म बंद नहीं होता है। होता तो बहुत ना मालूम, उसकी कोई मतलब ही नहीं जिसका आप सुने ना, कही तो होगा कि न्यारा है और न्यारा जानो के साहब। अब देखिए, तुमने जब वो न्यारा हुआ तब न्यारा जाना, दिक्कत यह है जब वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में था तब तुमने न्यारा नहीं जाना, ये खतरा है। बोलो गेला जी, समझ में आया नहीं? वो स्वाद रूप होना बार बार लिखा था ना, उसमें सारी जड़ भरी थी। अज्ञानी का स्वाद रूप होता है और ज्ञानी का स्वाद रूप नहीं होता है, ये रूप होता है, ज्ञानी उसे जानता है। तो इतना सा फर्क पड़ने वाला है। अब दोनों खाते दोनों ही है, अब सामने वाले को क्या पता पड़े कि इसे स्वाद रूप हुआ कि नहीं। समझ में ना? दोनों ही एक वही खाना बन रहा है शिविर में, और सब जने एक खा रहे हैं। अब किसको स्वाद रूप हो रहा है, किसको गेय रूप हो रहा है, पता ही नहीं चलता। क्यों? अब बंध में कितना फर्क पड़ जाएगा, सोच लो आप। खाना तो वो अशुद्ध खाने की बात नहीं है, बिल्कुल शुद्ध खाने की बात है। खाना है ना, देखो पढ़ दे, कान है ज्ञानी, यहाँ अज्ञानी के अवृत भावों की चर्चा है, यहाँ अज्ञानी के अवृत भावों की चर्चा है, इसलिए स्वाद रूप कह रहे। इस कारण उन्हें अज्ञान भाव में शामिल किया जा रहा है। आत्मख्याति टीका और जयचंद जी के भावार्थ में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कसाय का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय। अब आप कहेंगे कि भाई अयोग तेरहवें गुणस्थान में कैसे घटेगा? ये तो मैंने पहले दिन बता दिया था कि ये अपने चारों कसायों के हैं उदय। अगर ऐसा नहीं कि जो की अनंतानबंदी होगी, अगली अनंतानबंदी है, उसके प्रत्याख्यानावरण भी है, उसके प्रत्याख्यानावरण भी है, उसके संतुलन भी है। वो चारों कसाएं उदय रूप है, वो चारों के कार्य दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बोलो? कि हमें जो असंयम रूप भाव है वो मिथ्यात्व के उदय से नहीं है, वो अवृत्ति के उदय से है। प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से है, और जो हमें को मुनिपना नहीं हो पा रहा है वो प्रत्याख्यानावरण उदय का कार्य है। जो हमको संतुलन कसाय आगे नहीं हो रहा, वो काम हमको रुका हुआ है, वो संतुलन कसाय का काम है। तो चारों कसायों के काम अलग अलग है, इसलिए तो इधर ऐसा प्रश्न आया था कि साहब अनंतानबंदी नहीं जाए, अप्रत्याख्यानावरण चली जाए, उसका शिवसम हो जाए तो संबंध से नहीं होगा, छात्र तो नहीं जाए उसका शिव हो जाए तो संयम हो जाए। सुनी कभी ये बात आपने? और वो कहते द्रिवलिंगी मुनि के है, ये द्रिवलिंगी मुनि के क्या है कि उसके अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चली गई, इसलिए तारे तो हो गया और हमें छात्र नहीं गया, अनंतानबंदी नहीं गया। वो मैंने अभी एक जगह पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो बात कहां से आई, वहां ये इस टाइप की बात थी ख्याल में आई ना, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कहां से आई होगी अंदाज से, लेकिन बाद में तो मुझे मिला ऐसा। मेरा ये कहना है, अभी भी कहना है और तब भी कहना था क्या, और तो मैंने कभी ये नहीं चलेगा। यहां तो मेरा मानना यह है कि अनंतानबंदी के रहते हुए अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का अभाव नहीं है, ना उदय ना क्षय रूप, ना क्षय समरूप, ना उत्सम रूप, कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने कहा तुमको मतभेद है तो रहो, लेकिन यहां टोलमल की बाउंड्री के भीतर तो कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं जो मैं मानता हूं वो चलेगा। करके जाने का भाई साहब एक क्रम है, ऐसा नहीं चलेगा। देखो इत्यादि कथन से यह स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना जान रहा है। ज्ञानी की पर्याय में भूमिका अनुसार विद्यमान अवृत्ति कषाय आदि के उदय ज्ञानी के मात्र गेय बनकर रह जाते हैं, स्वाद रूप नहीं होते, ज्ञानी उन्हें अपना नहीं जानता। यही कारण है कि ज्ञानी का उन्हें जानने रूप प्रणमन ज्ञान भाव में ही आता है। तो ये पंक्तियां कब लिखी गई थी मालूम आपको? ये 92-93 में लिखी गई हूँ, 93-94 में, क्योंकि 91 में मैंने ये लिखना शुरू किया था। ये कर्ता के नम अधिकार यहाँ तक आए होंगे ना, तो ये बस 10 साल लगे मुझे इस लिखने में, 2200-2250 पेजों को लिखने में 10 साल लगे। बीच बीच में दूसरी चीजें भी आती नहीं, दूसरी छोटी छोटी किताबें बन गई, वो भी निकलती नहीं, ख्याल ना। तो इसमें उसके बीच में ये मेरी समझ, और उस वक्त सब लोग विद्वान थे, मतलब गुरुदेव के अलावा, क्या कह रहे हैं। तो मैं लिख दिया भीतरा विज्ञान आत्मधर्म जो भी था, उसमें छापा है, गया है, सबने पढ़ा है। उनने नहीं पढ़ा हो जिन लोगों ने, कि जिनको मेरे से अरुचि थी और मेरा पढ़ना निरर्थक लग रहा था, शायद उनने नहीं भी पढ़ा हो, तो मैं नहीं कह सकता, ख्याल नहीं ना। मैं कहता हूँ भले आदमी गलतियां निकालने के लिए ही पढ़ते, तो एक दफा पढ़ तो लेते और बता देते तो मेरी गलतियां तो निकल जाती, तो मैं तो अगले एडिशन में सुधार लेता। आत्मघाती टीका के अंतिम पैरा और जयचंद जी के भावार्थ में समागत तथ्य भी ध्यान देने योग्य है। वो जो मैंने पहले दिन कहा था ना कि क्या आएगा, वो आ रहा है अब। उनमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव इस प्रकार भाषित होता है, इसमें लिख दिया कि मुझे ऐसा लगता है, ये भाव होना चाहिए, देखा ना। यद्यपि पुराने पौद्गलिक कर्मों का उदय, ये आज पढ़ देता हूं, कल फिर रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करो, उनके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाले औपाधिक भाव, विभाव भाव, रागदेश रूप परिणाम, उन सब परिणामों के निमित्त होने वाले आगामी द्रव्य कर्मों का बंध, इन तीनों क्रियाओं के एक साथ एक समय में ही संपन्न होती है, तथा पौद्गलिक प्रणमन पुद्गल में होता है, उसका उपादान पुद्गल है, और राग द्वेष के परिणाम आत्मा में होते हैं, उनका उपादान आत्मा है। देखो अभी समय खत्म हो रहा है, मैं बता देता हूं क्या आने वाला है। कल एक दिन बताया था, आज फिर बताता हूं, कल विस्तार करूंगा। वो कहते हैं पुराने कर्म के उदय से हम में राग द्वेष हुए, तो राग द्वेष के निमित्त हुए, पुराने कर्म के उदय निमित्त हुए। उपादान तो आत्मा का राग रूप प्रणमन में आत्मा ही है, और फिर उन राग देश से नए कर्म बने, यही है ना। अब ये कहना चाहते हैं कि बीच में ये क्यों राग को फंसाते हो, पुराने कर्म के उदय आए और उनसे नए कर्म का बना हो गया, पुद्गल का पुद्गल में हो गया। तो पुराने पुद्गल कर्म के उदय और नए पुद्गल कर्मों का बंध, अब बीच में ये राग वाला मामला तुमने जोड़ रखा है, आत्मा को फंसा रखा है, तो इससे जो हम कहते हैं ना कि जीव का कर्ता जीव और पुद्गल का कर्ता पुद्गल, उसमें तुम्हें फिर शंका खड़ी जाती है, बीच में राग के बिना तो नहीं होगा, राग के बिना तो नहीं होगा, राग के बिना। वो कहते हैं जरा थोड़ी इसकी उपेक्षा करो, और ऐसी उपेक्षा करने की हमारी आदत है जनागम में भी और लौकिक में भी, क्या कि उसके वो पुराने कर्म का उदय आया, इसीलिए तो राग द्वेष हुए और इसीलिए कर्म बंधे। तो पुराने कर्म का उदय हो गया निमित्त, और नए कर्म का बंध हो गया निमित्त। हमें क्या लगता है, देखो अभय कुमार जी फिर ध्यान देना जरा, कि पुद्गल का पुद्गल तो उपादान है, निमित्त थोड़ी होगा, निमित्त कैसे करे शांति जी। अरे भैया एक पुद्गल का वो ही उपादान होता है, तो दूसरा पुद्गल है जिसका उदय आया, वो दूसरा पुद्गल है, और जो बना वो दूसरा पुद्गल है, इसलिए वो निमित्त ही होगा, उपादान नहीं होगा, समझ में आई ना। इसे तो बस पुद्गल का पुद्गल में पट गया, अपने अलग हो गए। और अब ऐसा इसमें लगाओ, अपना जो राग किया उससे कर्म बना और फिर वो उदय में आया था उससे राग हुआ। अब कर्म को बीच में क्यों फंसाते हो? हमारे पूर्व राग से नया राग पैदा हुआ, इसका भी सीधा रखो। तो पुद्गल अलग हो जाए बिल्कुल, पापन अलग हो जाए, ये बीच में गुत्थम गुत्था हो रही, ये सब गड़बड़ है, ये बात करने वाले उतनी उपेक्षा करो। पुद्गल के कारण पुद्गल बना, पूर्व पुद्गल कर्म का उदय और नए पुद्गल कर्म का मरण, और पूर्व पूर्व भाव राग देश भाव कारण और नए राग देश भाव कार्य। क्या फिर निमित्त क्यों कहते? निमित्त अलग है ना, वो पुराने राग भाव अलग थे, ये राग भाव अलग है, ये थोड़ी है जो ये तो अभी नए पैदा हुए, अभी तो नष्ट हो रहे, वो राग देश भाव थे। तो ये बात इसमें आने वाली है, है? तो बात करते